नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले के सेरीबागना इलाके में बादल फटने से 3 लोगों की मृत्यु। जिले के धर्मकुंड गांव में अचानक आई बाढ़ के बाद 100 से अधिक लोगों को बचाया गया, जबकि 40 मकान क्षतिग्रस्त। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पिछले 4 वर्षों में दोगुना होकर 32 अरब से बढ़कर 60 अरब डॉलर हुआ। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेम्स डेविड वेंस भारत के 4 दिन की यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचेंगे। ईसा मसीह के पुनरुत्थान के प्रतीक ईस्टर आज दुनिया भर में मनाया जा रहा है। स्क्वाश में वीर चोटलानी और अनाहत सिंह ने अगले महीने अमेरिका में होने वाली विश्व चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई किया। और आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स का सामना आज दोपहर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से, वहीं शाम को मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स आमने सामने होंगे। दोपहर समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में सेरीबागना में आज बादल फटने से 3 लोगों की मृत्यु हो गई। मृतकों में 2 बच्चे और 1 बुजुर्ग शामिल हैं। खराब मौसम के कारण धर्मकुंड गांव में करीब 40 घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। अब तक 100 से अधिक लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि बादल फटने की घटना आज सुबह हुई थी। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में सहायक आयुक्त बशीर उल हक चौधरी ने बताया कि इलाके के नाले में उफान के कारण आई बाढ़ से कई वाहन बह गए।
काफी जगहों पे क्लाउड बस्टिंग हुई हमारी, जिसमें काफी ज्यादा मलबा डबरी जो है वो हमारा टाउन जो रामबन मेन टाउन है उसमें आ गया। हमारी जो हाईवे हैं उसमें काफी जगहों पे जो है वो बहुत बड़ी बड़ी लैंडस्लाइड हो गई और कुछ एरियाज में जो है पानी का लेवल बढ़ने की वजह से जो है वो घरों को भी काफी डैमेज हुआ। कुछ घर जो है वो कम्प्लीटली वॉश आउट हो गए। उसी के साथ साथ अभी तक जानी नुकसान जो है वो 3 हुए, उसके बाद बाकी कहीं पे भी जान नुकसान नहीं हुआ है।
श्री चौधरी ने कहा कि मूसलाधार बारिश और भूस्खलन के कारण मिट्टी धंसने से जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों की आवाजाही बाधित हुई है।
नेशनल हाईवे है जो कश्मीर को रेस्ट ऑफ द कंट्री से जोड़ती है, तो बहुत सारी गाड़ियां जो है वो स्टैंडर्ड यहाँ पे थी, उनको जो है वो हमने रेस्क्यू करके जो है सेफ लोकेशन पे पहुंचा दिया गया है और जो ही नेशनल हाईवे खुलेगा तो उसके बाद उनको जो है वो यहाँ से दोबारा भेजा जाएगा अपने अपने डेस्टिनेशन पे। पहले से ही अपनी टीम्स को, कंट्रोल रूम्स को, रेस्क्यू टीम्स को अलर्ट करके रखा हुआ है, जिसमें SDRF है, NDRF है, ये सारी जो है वो ऑन द स्पॉट है, ग्राउंड पे है।
रामबन और उसके आसपास के इलाकों में कल रात भर ओलावृष्टि हुई और तेज हवाएं चलती रहीं। कई स्थानों पर भूस्खलन की घटनाएं भी हुई। रामबन के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने आकाशवाणी को बताया कि कल रात भर तेज बारिश की वजह से भूस्खलन और बाढ़ की घटनाओं के कारण रामबन में कई संपत्तियां नष्ट हो गई और जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर कई वाहनों को नुकसान पहुंचा।
चार पांच जगह और भी जो है पंथाल में है, तो वो सारी जगह जो है वो बंद है। रोड जो है 1-2 जगह से टूट चुकी है। पंथाल में थोड़ा जो लिंक था ब्रिज का वो भी फैल गया है, तो उस वजह से पूरी तरह से रोड जो है नेशनल हाईवे पूरी तरह से ब्लॉक है। जब तक ना वेदर ठीक होता तो ये हाईवे पे ट्रेवल जो है करना वो अवॉइड करें। जो ही हमारे पास क्लियरेंस होती है, अभी तो काम चल रहा है, बट लगता नहीं है कि शाम तक वो खुल पाएगा या कल तक भी खुल पाएगा, क्योंकि वेदर कंटिन्यूसली रेनिंग है।
भूस्खलन के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग पर आवाजाही रोक दी गई है। एक रिपोर्ट।
भूस्खलन के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग पर दोनों दिशाओं में वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है। अधिकारियों ने यात्रियों को मौसम की स्थिति में सुधार होने तक यात्रा से बचने की सलाह दी है। श्रीनगर सोनमर्ग गुमरी रोड, ऐतिहासिक मुगल रोड और सिंथन टॉप रोड भी बंद है। रामबन जिला प्रशासन ने जिला नियंत्रण कक्ष के 2 नंबर 01998295500 या 01998269 जारी किए हैं। इन पर आपात स्थिति में कभी भी संपर्क किया जा सकता है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया है और मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। दोनों नेताओं ने प्रभावित लोगों की पूरी मदद करने और प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य चलाए जाने का आश्वासन दिया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जितेंद्र सिंह ने बताया कि वे रामबन जिले के उपायुक्त के साथ लगातार संपर्क में हैं। उन्होंने कहा कि प्रभावितों को वित्तीय और अन्य सभी तरह की सहायता प्रदान की जा रही है। श्रीनगर से गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह।
इस बीच लद्दाख में अत्यधिक हिमपात के कारण करगिल में सामान्य जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने कई इलाकों में बर्फीले तूफान और बाढ़ आने की चेतावनी जारी की है। भूस्खलन के खतरों को देखते हुए लोगों से अनावश्यक रूप से घरों से बाहर न निकलने को कहा गया है। करगिल श्रीनगर और करगिल ज़ंस्कार मार्ग पर बर्फ जमा होने के कारण वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है। देश के विदेशी मुद्रा बाजार में पिछले चार वर्षों में काफी वृद्धि देखी गई है। ये वर्ष 2020 के 32 अरब डॉलर से लगभग दोगुना होकर 2024 में 60 अरब डॉलर हो गया है। एक रिपोर्ट।
रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बाली में आयोजित एक कार्यक्रम में इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भारत के वित्तीय बाजार अधिक गतिशील और लचीले हो गए हैं। ओवरनाइट मनी मार्केट का भी विस्तार हुआ है और इसका दैनिक कारोबार वर्ष 2020 के लगभग 3 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 2024 में 5.40 लाख करोड़ रुपए से अधिक का हो चुका है। श्री मल्होत्रा ने कहा कि सरकार प्रतिभूतियों के बाजार में औसत दैनिक कारोबार में भी 40% की वृद्धि देखी गई है, जो इसकी अवधि के दौरान 66,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। देश के वित्तीय बाजार के बुनियादी ढांचे को अत्याधुनिक बताते हुए उन्होंने कहा कि इनकी पारदर्शिता का स्तर दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बाजारों के बराबर है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेम्स डेविड वेंस कल भारत के 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचेंगे। उनके साथ उनकी पत्नी उषा वेंस और अमेरिका के कई वरिष्ठ अधिकारी भी होंगे। उपराष्ट्रपति वेंस की ये पहली भारत यात्रा है और वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि उपराष्ट्रपति और उनके प्रतिनिधिमंडल के दिल्ली में कई अन्य कार्यक्रम भी होंगे और अमेरिका वापस लौटने से पहले उनका जयपुर तथा आगरा जाने का भी कार्यक्रम है।
अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेम्स डेविड वेंस की भारत यात्रा दोनों पक्षों को द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति की समीक्षा करने का अवसर प्रदान करेगी। इस यात्रा के दौरान इस वर्ष 13 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान जारी भारत अमेरिका संयुक्त वक्तव्य के कार्यान्वयन की भी समीक्षा की जाएगी। दोनों पक्ष आपसी हितों के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी विचारों का आदान प्रदान करेंगे। भारत और अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी है, जो साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, कई मुद्दों पर हितों के अभिसरण और दोनों देशों के लोगों के बीच जीवन संपर्कों द्वारा संचालित है। दोनों पक्षों के नेताओं के बीच नियमित संवाद बढ़ते द्विपक्षीय संबंधों का एक महत्वपूर्ण अंग है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 अप्रैल को सऊदी अरब की 2 दिन की यात्रा पर जेद्दा जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि प्रधानमंत्री की आगामी यात्रा सऊदी सुल्तान की पहली भारत यात्रा की 70वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में हो रही है।
प्रधानमंत्री मोदी की 2016 में सऊदी अरब का पहली यात्रा द्विपक्षीय संबंधों में एक निर्णायक मोड़ थी। इस यात्रा के दौरान किंग सलमान ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान किंग अब्दुल अजीज शाह प्रधानमंत्री मोदी को प्रदान किया। 2019 तक संबंध और अधिक परिपक्व हो गए, जब क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने फरवरी में भारत का दौरा किया। उसके बाद उसी वर्ष अक्टूबर में मोदी की वापसी यात्रा हुई। इन आदान प्रदानों के परिणाम स्वरूप रणनीतिक साझेदारी परिषद की स्थापना हुई। प्रधानमंत्री मोदी का राज्य का प्रधानमंत्री भी रहे क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ मजबूत व्यक्तिगत संबंध है। उनके द्विपक्षीय संबंध गर्मजोशी और उच्च स्तरीय जुड़ाव से चिन्हित है। दोनों नेता 2025 से पहले 5 बार मिल चुके हैं। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार के लिए जेद्दा से।
प्रधानमंत्री कल नई दिल्ली में 17वें सिविल सेवा दिवस पर लोक सेवकों को संबोधित करेंगे। श्री मोदी लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए 16 अधिकारियों को प्रधानमंत्री पुरस्कार भी प्रदान करेंगे। ये पुरस्कार जिलों के समग्र विकास, आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम और नवाचार की श्रेणियों में दिए जाएंगे। आज दुनिया भर में ईस्टर का त्यौहार मनाया जा रहा है। ये दिन ईसा मसीह के कैलवरी में सलीब पर चढ़ाए जाने और बलिदान के बाद उनके पुनरुत्थान का प्रतीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईस्टर पर्व के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। केरल में ईस्टर का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
बिशप और वरिष्ठ पादरियों ने विभिन्न चर्चों में लोगों से शांतिपूर्ण तरह से रहने और समाज में वंचितों और जरूरतमंदों के प्रति विचारशील रहने का आह्वान किया। ये उत्सव मानवता की भलाई के लिए ईसा मसीह द्वारा झेले गए कष्टों के त्याग, प्रार्थना और चिंतन के अंत का संकेत देता है। ईसाई घरों में उत्सव के हिस्से के रूप में पारंपरिक दावतें तैयार की गई हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने तिरुवनंतपुरम में लूट सिरो मालाबार फॉरेन चर्च का दौरा किया और ईस्टर प्रार्थना में भाग लिया। कोची से राजमोहन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
मिजोरम में भी यह पर्व धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ईस्टर के मौके पर यूक्रेन से चल रहे युद्ध में 30 घंटे के संघर्ष विराम की घोषणा की है। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि उन्हें उम्मीद है यूक्रेन भी ऐसा ही करेगा। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ईस्टर युद्ध विराम को 30 दिन तक बढ़ाने का आह्वान किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी ने वक्फ संशोधन अधिनियम के लाभों के बारे में लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से एक राष्ट्रव्यापी अभियान वक्फ सुधार जन जागरण अभियान की शुरुआत की है। यह अभियान 5 मई तक चलेगा। इसके तहत भाजपा नेता और कार्यकर्ता मुस्लिम समुदाय के बीच जाएंगे और उन्हें संशोधित अधिनियम के बारे में जागरूक करेंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वक्फ संशोधन अधिनियम के विरोध में हाल ही में हुई राजनीतिक हिंसा और अफवाहों के बीच लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। राज्य सरकार द्वारा उठाए गए प्रशासनिक कदमों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी है कि दोषी पाए जाने पर किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। ममता बनर्जी ने भाजपा और उसके सहयोगियों पर पश्चिम बंगाल में उपद्रव करने का आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डॉ सीवी आनंद बोस ने कहा है कि वे मुर्शिदाबाद सांप्रदायिक हिंसा पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से बातचीत करेंगे और केंद्र को रिपोर्ट सौंपेंगे। राज्यपाल ने मुर्शिदाबाद जिले के अशांत क्षेत्रों का दौरा करने के बाद ये बात कही। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राष्ट्रीय राजधानी में 1100 से अधिक जीपीएस युक्त वाटर टैंकरों को झंडी दिखाकर रवाना किया। ये टैंकर उन इलाकों में तैनात होंगे जहां पानी की कमी है या पाइप से पानी की आपूर्ति संभव नहीं हो पा रही है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार का लक्ष्य हर घर में स्वच्छ पेयजल पहुंचाना है।
दिल्ली की नई सरकार पूरी तरीके से पारदर्शी और सुगम जल आपूर्ति के लिए संकल्पित है। जो दिल्ली में 1111 टैंकर भेजे जा रहे हैं, अब से हर एक टैंकर पे जीपीएस सिस्टम का लगना ताकि उसकी पूरी की पूरी ट्रैक रिकॉर्ड ध्यान में आए। ये पूरे सिस्टम को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए, भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता के लिए एक बहुत बड़ा कदम है।
जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि दिल्ली के लोग जीपीएस युक्त पानी के टैंकरों से उनकी वास्तविक स्थिति को ट्रैक कर सकेंगे।
हमारा केवल एक ही लक्ष्य है, मैं जो जो काम कर सकते थे दिल्ली को पानी की सेवा देने का उतना कर रहे हैं। हमारा लॉन्ग टर्म प्लान कि दिल्ली के हर घर में उसको नल से ही पानी मिले, ताकि धीरे धीरे टैंकर व्यवस्था को कम करेंगे। तो ये हमारी सरकार का ट्रांसपेरेंसी मॉडल है, गुड गवर्नेंस मॉडल है जिसको हमने शुरू किया।
जम्मू कश्मीर में श्रम विभाग ने अमरनाथ यात्रा के लिए सेवा प्रदाताओं की पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर दी है। जम्मू के डोगरा में सहायक श्रम आयुक्त के कार्यालय में एक हेल्प डेस्क खोला गया है जहां पंजीकरण निःशुल्क कराया जा सकता है। भारत के वीर चोटरानी और अनाहत सिंह ने अगले महीने अमेरिका के शिकागो में होने वाले विश्व स्क्वाश चैंपियनशिप 2025 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। वीर ने मलेशिया में आयोजित एशिया क्वालिफाइंग प्रतियोगिता के पुरुष फाइनल में मलेशिया के अमिशन राजचंद्रन को हराया। वहीं अनाहत ने महिला सिंगल्स के फाइनल में हांगकांग की तोवित से को पराजित किया। आईपीएल क्रिकेट में आज दोपहर बाद 3:30 बजे चंडीगढ़ में पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। वहीं मुंबई में शाम 7:30 बजे मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स आमने सामने होंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले के सेरी बागना इलाके में बादल फटने से 3 लोगों की मृत्यु। जिले के धर्मकुंड गांव में अचानक आई बाढ़ के बाद 100 से अधिक लोगों को बचाया गया जबकि 40 मकान क्षतिग्रस्त। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा, भारत का विदेशी मुद्रा बाजार पिछले 4 वर्षों में दोगुना होकर 32 अरब से बढ़कर 60 अरब डॉलर हुआ। अमरीकी उपराष्ट्रपति जेम्स डेविड वेंस भारत की 4 दिन की यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचेंगे। ईसा मसीह के पुनरुत्थान का प्रतीक ईस्टर पर्व आज दुनिया भर में मनाया जा रहा है। और स्क्वैश में भारत के वीर चोटरानी तथा अनहा सिंह ने अगले महीने अमरीका में होने वाली विश्व चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।